हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आर्यांश की जिंदगी में उसके दादाजी काफी मायने रखते थे। कपूर फैमिली के रिश्ते हमेशा से ही जैन फैमिली के साथ काफी अच्छे थे। ऐसे में आर्यांश और कियाना के दादाजी यही चाहते थे कि आर्यांश और कियाना की शादी करके इस रिश्ते को एक नया नाम दिया जाए। जल्द ही आर्यांश के दादाजी का बर्थडे आ रहा था, जिस पर एक ग्रैंड पार्टी होने वाली थी। कियाना ने यही सोचा था कि ये पार्टी वो आर्यांश के साथ अटेंड करेगी, ताकि उसके दादाजी को लगे कि उन दोनों के बीच का रिश्ता अच्छा है और वो जल्द ही उनकी सगाई अनाउंस कर दें। तो वहीं आर्यांश के दिमाग में इस वक्त यही चल रहा था कि कैसे वो कियाना को बर्थडे पार्टी में सबके सामने एक्सपोज करे। अगर कियाना का असली चेहरा सबके सामने आ जाता तो आर्यांश को उसके साथ किसी तरह का रिश्ता रखने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। हालांकि कियाना को पता चल गया था कि आर्यांश और दीवा का ब्रेकअप हो गया है, फिर भी दीवा पर उसकी पूरी नज़र थी। कियाना को शक ना हो ये सोचकर आर्यांश ने भी कुछ दिनों के लिए दीवा को उसकी फैमिली के पास रहने के लिए भेज दिया था। आर्यांश ऑफिस आ गया था। जैसा कि उसे उम्मीद थी, कियाना उससे मिलने के लिए आई। कियाना को देखते ही आर्यांश के चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे। उसने उसे अंदर आने का इशारा किया। कियाना अंदर आते हुए गंभीर आवाज में बोली, जानती हूँ तुम्हें अकेले रहना है, पर फिलहाल मैं डैड के कहने पर ही यहाँ पर आई थी। ठीक है, बैठो, आर्यांश ने बिना किसी भाव के जवाब दिया और कियाना को बैठने का इशारा किया। कियाना आर्यांश के सामने चेयर पर बैठ गई थी। कुछ पल रुककर उसने उसी सीरियस टोन में कहा, दादाजी की बर्थडे पार्टी आ रही है, कल इस बारे में हमारी बात हुई थी, पर रात को डैड ने डिसाइड किया है कि ये पार्टी हम दोनों साथ में अटेंड करने जाएं। मैंने उन्हें मना किया था पर वो सुनने को तैयार नहीं है। आई होप इससे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, मैंने भी सोच लिया है, मैं दादाजी के बर्थडे पार्टी को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। फिलहाल मेरी लाइफ में कोई नहीं है जिसे मैं वहाँ लेकर जा सकूँ। हम दोनों साथ चलेंगे, आर्यांश ने बिना सोचे समझे उसे हाँ कह दी थी। वैसे भी जैसा माहौल चल रहा था, उसे आर्यांश के बर्ताव से कियाना को बिल्कुल भी शक नहीं हो रहा था। वो हमेशा की तरह सधे हुए ठंडे लहजे में बात कर रहा था। आर्यांश के चेहरे के भावों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो किसी से बात करने के मूड में नहीं है। ऐसे में कियाना वहां पर रुककर आर्यांश को इरिटेट में ही करना चाहती थी। वैसे भी उसने आते वक्त यही कहा था कि वो बस एक काम के चलते वहां पर आई थी। कियाना चेयर से उठी और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं, मुझे अपने डिजाइनर का कॉन्टैक्ट नंबर दे देना ताकि हम ट्विनिंग करते हुए अपनी ड्रेस डिजाइन करवा लें। आर्यांश ने हाँ में सिर हिलाया। कियाना उसे बाय बोलकर दरवाजे के पास पहुंची ही होगी कि तभी आर्यांश अचानक उसके पीछे आ गया था और उसने कियाना को अपनी बाहों में भर लिया था। आर्यांश के इस कदम से कियाना तो मानो वहीं पर जम गई थी। उसने कभी यकीन नहीं किया था कि आर्यांश उसे इस तरह पकड़ेगा। उसके चेहरे पर हल्की सी विक्ट्री स्माइल थी। आर्यांश ने अपने चेहरे को कियाना की गर्दन में छुपा लिया था। वो धीमी लेकिन मायूस आवाज में बोला, तुम ठीक कह रही थी, वो किसी भी तरह मेरे लायक नहीं है, लेकिन उससे पीछा छुड़ाना इतना आसान भी नहीं है। पूरे 4 महीने से वो मेरे घर पर रह रही है और हमारे बीच फिजिकल रिलेशंस भी थे। मुझे डर है कि वो ये बाहर एक्सपोज ना कर दे। तुम वो सब मुझ पर छोड़ दो, कियाना जल्दी से बोली। वो आर्यांश की तरफ पलटी और उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, तुम इस मामले से खुद को दूर रखो, मैं जानती हूँ तुम अच्छे से हैंडल कर सकते हो, पर इस बार इसे मुझे संभालने दो। मुझे उस जैसी लड़कियों को उनकी औकात दिखाना अच्छे से आता है। दादाजी की बर्थडे पार्टी न्यूयॉर्क में है, वो वहां कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन मुझे डर है कि अगर वो वहां गई और दादाजी के सामने कुछ बोला तो। आर्यांश बोलते हुए रुक गया था, मानो उसे ये सब होने से कितना डर लग रहा हो। सच तो ये था कि अगर ऐसा कुछ होता तो आर्यांश खुद अच्छे से हैंडल कर सकता था। पहले भी उसने इनाया को किडनैप करने वाले गुंडों और नितारा दास को बिना किसी को भनक लगे सबक सिखाया था। डोंट वरी, दादाजी के बर्थडे पार्टी से पहले ही मैं उससे निपट लूंगी, आर्यांश, कियाना ने मुस्कुरा कर कहा। थैंक यू सो मच कियाना, तुम सच में मेरी अच्छी दोस्त हो। पहले मुझे लगता था कि दादाजी तुम्हें इतना पसंद क्यों करते हैं, अब मुझे कारण समझ में आ गया। तुम सच में कमाल की हो, प्लीज सब संभाल लेना और पिछली बार की तरह किसी ऐसे आदमी को हायर मत करना जो ट्रस्टवर्दी ना हो। मैं चाहूं तो ये सब खुद देख सकता हूं, पर मुझे डर है कि ऐसे में दीवा बचकर बाहर आ गई तो मेरा नाम उसके साथ जुड़ जाएगा, आर्यांश ने लाचारी से कहा। कियाना ने उसकी बात पर हामी भरी। उसने आर्यांश को यही आश्वासन दिया कि इस बार दीवा को रास्ते से हटाने के लिए वो अच्छे आदमियों से अपना काम करवाएगी। कियाना वहां से निकल गई थी। वो इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर हल्के परेशानी के भाव थे। उसने मन ही मन कहा, पिछली बार मॉम की हेल्प से मैंने उस छोटी बच्ची को किडनैप किया था, उसने काम अच्छा किया था लेकिन वे पकड़े गए थे। इस बार मैं किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकती हूँ, मैं इस मामले में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस मुझे कुछ सोर्सेज का यूज करके अंडरवर्ल्ड के अच्छे लोगों को हायर करना होगा। कियाना ने पूरा मामला अपने आप बिना किसी को बताए हैंडल करने का सोचा। वो अपने काम पर लग गई थी तो वहीं उसके निकलते ही आर्यांश के फेस पर ईविल स्माइल थी। कितना आसान है तुम्हें बेवकूफ बनाना कियाना जैन, तुम्हारी यही बेवकूफी तुम्हारे खिलाफ काम करेगी। शायद तुम भूल गई हो, वो मेरे दादाजी ही थे जिन्होंने हमारे बिजनेस को लीगल बिजनेस में बदला था और पुराने टाइम से चले आ रहे अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन को खत्म किया था। उन्हें अपने नाम के साथ किसी तरह का दाग नहीं चाहिए, आर्यांश ने सिर हिलाकर खुद से कहा। उसने तुरंत सार्थक को कॉल कनेक्ट किया और बोला, दीवा की सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दो कि उसके 100 मीटर तक कोई भी अनजान आदमी फटक ना सके। दूसरा, कियाना पर नजर रखो, वो किसी को दीवा को नुकसान पहुंचाने के लिए हायर करने वाली है। वो जिसे भी हायर करे उसे खरीद लो। कियाना माफिया या इलीगल काम करने वाले जिन भी लोगों से मिले उनके साथ उसकी फोटो क्लिक कर लो। मुझे हर एक सबूत अच्छे से चाहिए ताकि बर्थडे पार्टी पर सबके सामने कियाना की मूवी प्ले कर सकूं। जी सर, मैं पहले ही इस काम पर लग गया था और मेरी गाड़ी इस वक्त मिस जैन के पीछे ही है, सार्थक ने जवाब दिया। आर्यांश ने उसकी बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कियाना को अपने जाल में फंसाना इतना आसान होगा। आर्यांश ने अपनी तरफ से खेल शुरू कर दिया था, लेकिन एक खेल तो उसके खिलाफ भी खेला जा रहा था जिसकी उसे भनक तक नहीं थी। वहीं दीवा ने आज जानबूझकर ऑफिस से लीव लिया था। नव्या ने आर्यांश के कहने पर इस बारे में कियाना को भी इन्फॉर्म कर दिया था। कियाना को यही लग रहा था कि दीवा ब्रेकअप के गम को झेल नहीं पा रही है, इस वजह से वो सबके सामने नहीं आना चाहती। दीवा घर पर प्रार्थना के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। वे दोनों साथ में किचन में थी। दीवा काफी दिनों बाद लंबे समय के लिए रहने के लिए घर पर आई थी। हालांकि प्रार्थना उसके आने पर खुश थी, लेकिन उसे दिल ही दिल में ये डर भी लग रहा था कि कहीं आर्यांश और दीवा के बीच कोई अनबन ना हो गई हो। कुकिंग करते हुए प्रार्थना ने दीवा के हाथों को अपने हाथ में लिया और परेशान स्वर में बोली, दीवा प्लीज झूठ मत बोलना, तुम्हारे और आर्यांश के बीच सब ठीक है ना? पहले वो तुम्हें लेकर बहुत पजेसिव था, तुम्हें थोड़े टाइम के लिए भी खुद से दूर नहीं करता था। तुम अब कह रही हो कि तुम एक हफ्ते के लिए यहाँ पर आई हो।
हाँ मॉम, और इसमें गलती क्या है? आर्यांश अपने काम के चलते थोड़ा बिजी रहने वाला था तो मैंने उसे कह दिया कि मैं आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। वैसे भी मेरा हक बनता है कि मैं अपने मॉम डैड से भी मिलने आऊँ, दीवा ने जवाब दिया। अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारी आंखें सूजी हुई क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत रोई होगी, प्रार्थना जल्दी से बोली। दीवा की लाल आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। दीवा ने अपनी नज़रें नीचे कर लीं। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, सर्जरी के टाइम कुछ गलत दवाइयों की वजह से इन्फेक्शन हो गया था। वो गैसियस फॉर्म में थी और सीधी मेरी आंखों में चली गई। ट्रस्ट मी, मेरे और आर्यांश के बीच सब कुछ ठीक है। दीवा के समझाने पर फिलहाल तो प्रार्थना शांत हो गई थी, लेकिन अभी भी उसका मन ये मानने के लिए तैयार नहीं था। बातचीत का टॉपिक बदलते हुए प्रार्थना ने कहा, अच्छा आर्यांश पहली बार यहाँ पर आया था तो मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उससे पहले भी मिल चुकी हूँ। क्या तुम्हारी इस बारे में उससे बात हुई? उसने बताया कि हम दोनों की कहीं मुलाकात हुई है। नहीं मॉम, मैंने कहा ना आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आर्यांश आपसे पहले ही मिल चुका होता तो वो मुझे बता चुका होता। आप ज़रूर ऑफिशियली उसे उस दिन मिली होंगी जब आर्यांश पहली बार हमारे घर आया था। वो आपको पहले ही देख चुका है और अच्छे से जानता भी है। अगर आप दोनों पहले मिले होते तो आर्यांश ज़रूर बताता। आपने उसकी फ़ोटो किसी बिजनेस मैगज़ीन पर देखी होगी, दीवा ने जवाब दिया। प्रार्थना ने उसकी बात पर हामी भरी। प्रार्थना को याद नहीं आ रहा था कि वो आर्यांश से पहले कहाँ मिली थी, लेकिन उसका शक गलत नहीं था। वहीं दूसरी तरफ दीवा के घर छोड़ने की खबर सिर्फ कियाना को ही नहीं हुई थी बल्कि प्रियंक को भी हो गई थी। ऐसे में प्रियंक के पास अच्छा मौका था जब वो दीवा से आर्यांश के दादाजी के बर्थडे पर अपने साथ न्यूयॉर्क जाने के लिए कह सकता था। प्रियंक रात के 7 बजे के करीब बिना कॉल किए सीधा गोयंका मेंशन पहुंच गया था। थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन तुम्हारे भी फ्यूचर का सवाल है और मुझे अच्छे से पता है तुम मना नहीं करोगी दीवा गोयंका। उम्मीद है कि तुम सही डिसीजन लो और अपनी ज़िंदगी उस शैतान के हाथों बर्बाद होने से बचा सको, प्रियंक मन ही मन बोला और उसने गोयंका मेंशन के घर की डोरबेल बजाई। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। सब अपनी अपनी तरफ से खेल खेल रहे हैं, देखते हैं कि किसकी प्लानिंग कामयाब होती है। चलिए आप पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं। सॉरी, कल गलती से चैप्टर रिपीट हो गया था और पता नहीं चला था।